ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है और भारतीय पीढ़ियों से प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। वे कल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगले साल ब्रिक्स की भारत अध्यक्षता के दौरान इसे सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण के रूप में फिर से परिभाषित किया जाएगा। श्री मोदी ने भारत के ब्रिक्स नेतृत्व के लिए संभावित फोकस क्षेत्रों की चर्चा की और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अपनी सरकार की पहलों के बारे में मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, हरित हाइड्रोजन मिशन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बेहद सफल रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति और ब्राजील सरकार को इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान किए गए कार्यों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया में विंडहुक पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा नामीबिया के राष्ट्रपति नितिम्बो नंदी नितवाह के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार तथा सहयोग के नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना है। इनमें हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ मृदा सामग्री और एकीकृत भुगतान व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास, जन कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्री रेड्डी कल जयपुर में 7 सितारा और 5 सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नॉर्वे के विशेषज्ञों के साथ भारत में गहरे समुद्र से तेल और गैस निकालने का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, क्योंकि भारत हाइड्रोकार्बन की खोज को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के 10वें दौर में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े अपतटीय अन्वेषण बोली दौर में 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अन्वेषण करने की योजना बना रहा है। तीरंदाजी में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम आज से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होने वाले तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चौथे चरण में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। इस साल की विश्व कप श्रृंखला के अंतिम चरण में 49 देशों के 336 तीरंदाज इस साल के अंत में नानजिंग में प्रतिष्ठित विश्व कप फाइनल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को विंबलडन के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मिली, क्योंकि ग्रिगोर दिमित्रियोव को लगी दुर्भाग्यपूर्ण चोट ने कल उन्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का अवसर दिया। सिनर को 6-3, 7-5 से लगातार सेटों में हराने के बाद दिमित्रियोव 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विंबलडन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पेक्टोरल चोट के कारण उन्हें मैच से हटना पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। श्री धनखड़ ने कहा कि अपने क्षेत्र में हर संस्थान सर्वोच्च है, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार की घुसपैठ लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।